मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 29 अप्रैल 2019 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं डॉक्टर अनीता दत्तू शिंदे जालना महाराष्ट्र से, संतोष कुमार गुप्ता आपका गांव है बाजपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, सुनील एटकर मुंबई महाराष्ट्र से और विक्रम कुमार पांडे आपका गांव है नवाडीह जिला जमुई बिहार से। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे इस इश्यू पर बात करना चाहूंगा कि प्री एग्जामिनेशन की तैयारी अब आपको किस तरीके से करनी चाहिए, यानी कि अब जो वक्त बचा है उस वक्त का कैसे आपको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए, थोड़ी सी दो छोटी छोटी घटनाएं हैं, न्यूज है कह लीजिए, उन्हें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप न्यूज में भी सुन रहे हैं कि भारत में एक तूफान, चक्रवाती तूफान आने वाला है, संभावना उसको लेकर के चेतावनियां दी जा रही हैं, जिसका नाम है फनी, FUNNY। यह नाम बांग्लादेश ने दिया है, फनी नाम का चक्रवाती तूफान। मैं चक्रवाती तूफान के बारे में, इस तूफान के बारे में आपसे कुछ बताने नहीं जा रहा हूं। मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब इस तरह की न्यूज आप सुनते हैं तो आपको कैसे सुनना चाहिए या सुनने के बाद कैसे इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, सिविल सर्विस प्रिपरेशन अगर आपको सही मायने में सही तरीके से करनी है तो यह मत सोचिए कि आपने न्यूज में सुन लिया, आपको याद हो गया कि फनी एक चक्रवाती तूफान है और बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है, भारत में भी आया था, इसी से बात नहीं बन जाएगी। इस पर्टिकुलर सूचना के बारे में तो हो सकता है कितने से ही बात बन जाए, लेकिन इस अवसर का उपयोग या यूं कह लीजिए इस सूचना का उपयोग आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में करना चाहिए, या आप ऑलरेडी जानते हैं तो उन्हें दोहराने के रूप में करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप अखबार पढ़ेंगे तो अखबार पढ़ने में आपको एक वाक्य मान लीजिए कि मिलता है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र अब एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मान लीजिए कि आपने पढ़ाई, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। अब आप इसे पढ़ लीजिए, सामान्य रूप से आपके दिमाग में भी आ जाएगा और आपको लगेगा कि ठीक है, समझ गए, आपने सच पूछे तो इसे रट भी लिया है, लिख भी लिया है, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। यह मौका है जब आप इस वाक्य को समझने की कोशिश करें या एक्सप्लेन करें। मान लीजिए कि यह वाक्य है और इस वाक्य को आप एर्थ के स्टूडेंट को समझा रहे हैं तो आप कैसे समझाएंगे उसे, इसका अर्थ कैसे समझाएंगे, वो कहना क्या चाह रहा है। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले आप नक्शा खोलेंगे और उसमें बंगाल की खाड़ी निकालेंगे तो नो डाउट कि जब हम बंगाल की खाड़ी को नक्शे पर देखते हैं तो देखिए भारत का जो हमारा पश्चिम बंगाल वाला जो वेस्ट बंगाल का जो हमारा हिस्सा है और खासकर नॉर्थ ईस्ट का भी थोड़ा सा, वो हमारे बंगाल की खाड़ी के आसपास है और वहां पर बंगाल की खाड़ी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि जहां हम हैं बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए, वो बंगाल की खाड़ी का उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, और यहां दे रहा है दक्षिण, यानी कि बिल्कुल किनारे। बंगाल की खाड़ी कोई छोटी सी नहीं है, केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, नीचे बहुत नीचे तक है। तो उसके बिल्कुल दक्षिण में, बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाए, उसके अपोजिट चले जाए तो दक्षिण। फिर कह रहा है कि पूर्व, पश्चिम भाग में नहीं है, वो उसके पूर्व में है, यानी कि और आगे जाकर के आपके हाथ के दाहिने ओर। वहां एक सिचुएशन बनी, एक नेचुरल सिचुएशन बनी, और वो नेचुरल सिचुएशन क्या बनी कि उसके ऊपर एक गहरे दबाव का क्षेत्र बना, एक कम दबाव का क्षेत्र बना। वहां गर्मी इतनी पड़ी कि वहां कम दबाव का जब क्षेत्र बना तो जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो स्वाभाविक है कि आसपास की जो हवाएं हैं उस उधर दौड़ेंगी, तो जो समुद्री हवाएं हैं अब इस कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर तेजी से दौड़ रही हैं, और जब ये स्पीड से दौड़ती हैं तो उसी में वो तूफान का रूप ले लेती है। तो आपको स्टूडेंट को यह समझाना पड़ेगा यहां कि देखो ये जो तूफान, चक्रवाती जो तूफान बनते हैं ये कैसे बनते हैं, तब जाकर के यह वाक्य समझ में आएगा। यह आपका आपके लिए एक अवसर है जब आप अपने ज्योग्राफी वाले इस हिस्से को दोहरा सके। इसके बाद फिर आप देखिए कि उसमें बता रहे हैं कि कैसे वो दक्षिण तमिलनाडु में जाएगा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से को प्रभावित करेगा और फिर ऊपर होते हुए वो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगा। ये सारी घटनाएं वो बताते हैं कि उसका रूट क्या होगा। आप मैप में जब देखेंगे कि इसका रूट क्या होगा तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही ये क्यों रूट पकड़ रहा है, क्योंकि रास्ता ही उसका वही होगा। क्योंकि जब आकर के हमारे पूर्वी तट से टकराएगा तो पूर्वी तट से टकराने के बाद फिर आंध्र प्रदेश के सहारे होते होते ऊपर ही बढ़ेगा ना, ऊपर बढ़ेगा तो पश्चिम बंगाल की तरफ जाएगा। लेकिन आप एक बार नक्शा उठा करके देखने और थोड़े से समझने की कोशिश तो कीजिए। तो ये चीज जो आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जो बड़ी उबाऊ सी भी लगती है, समझ में नहीं आता कि ये क्यों लिखा जा रहा है, आप देखिए कैसे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और इन्हीं सबको आधार बना करके प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में पूछे जाते हैं। स्ट्रेट नहीं पूछे जाएंगे, वो तो ये चेक करना चाहते हैं कि हाँ ये जो तूफान बनते हैं और चलते हैं और भारत में आते हैं और आने के बाद कहां से कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसके बारे में आपकी जानकारी समझ कहला जानकारी नहीं समझ है या नहीं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी खबर थी। दूसरी आपने न्यूज में सुनी होगी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केरल के मामले में। तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एजेंसी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है। फिलहाल मैं उसके बारे में बताने नहीं जा रहा हूं, आप किताबों से उसे देख लेंगे। कोई विशेष घटना जब कभी घटित होगी तो मैं चर्चा करूंगा। मित्रों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर कि अब जो प्री एग्जामिनेशन के लिए देखिए ऑलमोस्ट लगभग एक महीने का वक्त बचा हुआ है, तो इन एक महीने के वक्त का कैसे आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उस पर मैं अपनी कुछ राय देने जा रहा हूं। जरूरी नहीं कि आप इसका ज्यों का त्यों पालन करें, क्योंकि हर स्टूडेंट की तैयारी का स्तर अलग अलग होता है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि सफल होने के लिए ये करना बहुत जरूरी है, नॉट एट ऑल। मैं तो एक सामान्य सी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप देखिए कि मेरी इन बातों को आप कहां तक अपनी बातों से अपनी परिस्थितियों से जरूरतों से जोड़ करके एक बेहतर रास्ता बना सकते हैं, मार्ग एक अच्छा मार्ग चुन सकते हैं। दोस्तों अब जबकि प्री एग्जामिनेशन का एक महीने का ही वक्त बच गया है तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप बहुत ही संवेदनशील बिंदु पर पहुंचते चले जा रहे हैं और इनफैक्ट एक महीने का वक्त अब कुछ भी नहीं होता। तो पहली बात तो अब आपको पूरी तरह से अपने को प्री के लिए समर्पित कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, यानी कि आपकी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है वो प्री तक केंद्रित हो जानी चाहिए। प्री तक केंद्रित हो जाने चाहिए कहने का मेरा मतलब है कि सामान्यतया जो स्टूडेंट वास्तव में गंभीरता के साथ और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हैं वो लगातार मेंस की ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो अब उनको चाहिए कि कुछ समय के लिए, मेंस का मतलब है कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को वो की तैयारी को वो कुछ समय के लिए रोक दें। ठीक है, आप 5-7 दिन और आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप उसे रोक सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से अब आप प्री की तैयारी पर फोकस्ड कर दें। लेकिन याद रखें कि अगर मैं कह रहा हूं प्री पर फोकस कर दें तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप न्यूज सुनना बंद कर दें और अखबार पढ़ना बंद कर दें, नॉट एट ऑल। ऐसी गलती कभी भी ना करें, आप न्यूज भी सुने, न्यूज पेपर भी पढ़ें और अच्छे तरीके से सुने और अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और ये भी मत मान करके चले कि अब की न्यूज आपके आगे कुछ काम नहीं आएगी। न्यूज तो एक ऐसी चीज है जो बड़ा कंटिन्यूअस टेंस में चलती रहती है। अभी जो घटना आप सुन रहे हैं हो सकता है 6 महीने पहले उससे जुड़ी हुई घटनाएं हो, तो इसे तो आप तरोताजा करने के रूप में लीजिए कि आपकी प्री की प्रिपरेशन को भी ये तरोताजा बनाएंगे। तो अब जो दूसरी बात है, देखिए आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सर्विस कर रहे होंगे या और भी दूसरे कामों में लगे हुए होंगे, उन्हें क्या करना चाहिए। मित्रों मैं ये बात तो नहीं कहूंगा कि प्री एग्जामिनेशन के लिए अब आपको एक महीने की छुट्टी ले लेनी चाहिए, नहीं ऐसा मुझे लगता है कि ऐसी जरूरत भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए जिनके इस तरह की परिस्थितियां जिनकी होती हैं वो शुरू से मानकर चलते हैं कि वो एग्जामिनेशन के समय में चूंकि पूरी तरह से इतना समय नहीं दे पाएंगे तो अपनी पकड़ बनाते चलते हैं। लेकिन उन्हें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यदि संभव हो तो आप कोशिश कीजिए कि 10 दिन की आपको छुट्टी मिल जाए, पूरी तरह से अगर आप ले सकते हो तो 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप 10 दिन की छुट्टी ले लेंगे, देखिए जब हम ऑफिस जाते हैं और कुछ करते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खलल होता ही है, डाइवर्शन भी होता है, लेकिन अगर 10 दिन तक आप लगातार पूरी तरह से अपने आप को प्री के प्रिपरेशन में डुबो देंगे तो आपकी जो मानसिक संरचना है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, यहां तक केंद्रित हो जाएगी, आपके दिमाग का एक वातावरण बन जाएगा। तो छुट्टी लेने से आपको ये फायदा मिल सकती है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप डेफिनेटली करना चाहिए, आप ऐसा करें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि अब आपको पढ़ना क्या चाहिए। एक महीना बचा है तो आप पाएंगे कि जो चार सब्जेक्ट हैं जिस पर सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहली बात तो है कि आप उन पर ज्यादा से ज्यादा कमांड बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं कह रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए तो जैसा कि मैंने अभी तूफान को आधार बना करके समझाने की कोशिश की है, उस पैटर्न पर आप कोशिश कीजिए कि उसे आप समझें। अब प्री के पैटर्न पर समझने की कोशिश करें। दूसरी बात कि आपको टेस्ट सीरीज अधिक से अधिक सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज आप कैसे सॉल्व करेंगे मित्रों, डेफिनेटली केवल सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी, उसका एक तरीका है, उसके बारे में मैं फिर किसी दिन आपसे बात करूंगा कि आप कैसे किस तरीके से सॉल्व करके उसका ज्यादा से ज्यादा अच्छा उपयोग अपने लिए कर सकते हैं। दोस्तों अब एक बात और है, चूंकि समय ज्यादा नहीं है, जो मैं कहना चाहूंगा यहां वो कि आपको करेंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। करेंट अफेयर्स का कंपोनेंट धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि डायरेक्ट करेंट अफेयर्स से न पूछे जाएं, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बैकग्राउंड में करेंट अफेयर्स होते हैं, और यदि आप करेंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से तैयार आपने कर लिया है तो उससे आपको उन्हें सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो करेंट अफेयर्स पर आपकी तैयारी हो। यहां मैं एक बात आपसे अर्ज कर सकता हूं और वो ये कि करेंट अफेयर्स के लिए afis.com ने बाकायदे एक प्रोग्राम YouTube पर डाला हुआ है जिसमें कुछ टॉपिक उसमें बताए हुए हैं, और हम लोगों का यह अनुभव रहा है कि पिछले साल और उसके पिछले साल के भी ऑलरेडी YouTube पर अवेलेबल हैं, एग्जामिनेशन हो चुके हैं, आप मैच करके देख सकते हैं कि उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी उन्हीं संभावनाओं को आधार बनाकर के हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स आप लोगों को अवेलेबल कराए हैं, और साथ ही साथ उन टॉपिक्स पर लगभग 250 क्वेश्चंस प्री के पैटर्न पर तैयार भी किए गए हैं, वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनसे भी यदि आप चाहें तो मदद ले सकते हैं। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।